सोच रहे हैं। सील मंगल का अर्थ है स्त्री से प्रेम करना, उसकी आवश्यकताओं को पूछना, उससे मधुर वचन बोलना इत्यादि, ये लोग जानते ही नहीं। मार्कंडेय जी आदि को पता ही नहीं कि कैसे स्त्री को खुश रखा जाएगा, तो इनके पास कोई स्त्री कैसे रहेगी। तब इस पर प्रश्न है, हिरण्यकश्यपु आदि तो इस विषय में दक्ष हैं, ये लोग तो जानते हैं कि स्त्रियों को कैसे रखा जाता है, खुश रखा जाता है। हाँ लेकिन ये तो है, परंतु ऐसे लोगों के आयु का कोई ठिकाना नहीं है। भगवत द्वेषेण अकस्मात मृत्यु संभव है, ऐसा आदमी ये तो गुण है लेकिन भगवान से द्रोह कर रहा है, कब मर जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो जिसका ठिकाना ही नहीं कि कब मर जाएगा तो उसके साथ मैं क्या रहूँगी। इस तरह से बहुत बहुत लोगों का नाम आया है टीका में, और लक्ष्मी जी ने सबको चाट दिया, केवल कमल नयन भगवान को वर्ण किया, लेकिन सब में दोष निकाल रही थी। अतः भगवान मुकुंद में भी दोष निकाले, जो भगवान वहाँ खड़े थे समुद्र मंथन के समय चतुर्भुज रूप से, तो उन पर विचार करने लगे तो कहते सब में दोष है, इनमें भी दोष है। इनमें क्या दोष है कि ये मुझे चाहते ही नहीं है, ये इनमें दोष। और सब देवता लक्ष्मी जी की तरफ देख रहे थे, हम पर कृपा कटाक्ष कर रहे हैं, हम पर देखे, लेकिन भगवान लक्ष्मी को नहीं देख रहे थे। वो तो अपने स्वरूप के आनंद में प्रसन्न रहते हैं, भगवान को किसी की अपेक्षा नहीं। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि भले ही ये मुझे नहीं चाहते हैं, लेकिन इन्हीं के चरणों की मैं दासी बनूंगी, और भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। तो लक्ष्मी जी आदर्श है, सीखना चाहिए, ये कोई चुनने की जरूरत नहीं है, चुन लिए गए हैं भगवान ऑलरेडी। सबसे बड़ी विदुषी स्त्री, सबसे बड़ी धनी सौभाग्यवती लक्ष्मी जी ने ये सिखा दिया कि वास्तव में भजन करना चाहिए तो विष्णु का, कृष्ण का, सब तरह से ठीक है। सबसे धनी है, धन का तो कोई और छोर ही नहीं है, सुंदरता है, स्वभाव बहुत अच्छा है, दया है, कभी भी किसी भक्त से कोई गलती हो जाती है तो भगवान कभी दंड नहीं देते, कहते भी नहीं है कि आपने गलती किया। यही अक्रूर जिससे मंतक मणि चुरा कर भाग गए थे और हत्याकांड में भी इनका हाथ था, सत्राजित की जो हत्या हुई थी उसमें इनका भी हाथ, कृतवर्मा और अक्रूर जी ने मिल करके सुधन्वा को इंस्टिगेट किया था। तुमको याद है सत्राजित कहा था अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तुमसे, और किया नहीं, कर दिया कृष्ण से। ये सत्राजित बहुत बदमाश आदमी है, तो उसको मार कर क्यों नहीं मणि छीन लेते। अक्रूर जी वहाँ थे और वो भी कह रहे थे मार, भगवान कृष्ण गए थे उस समय हस्तिनापुर, क्योंकि पांडवों के लक्ष्य गृह में जलने का खबर आ गया था, तो भगवान और बलराम जी चले गए थे। जब भगवान बाहर थे तब अक्रूर जी आदि साहस किए थे, तो वो तो मूर्ख आदमी और जा इन लोगों के बहकावे में आ गए। इन्होंने कहा कि हम लोग दहेज देखेंगे, चलो तुम करो हत्या। वो गया, सत्राजीत को मार करके मणि छीन लिया, मणि छीन कर घर में रख लिया। तब सत्यभामा जी रोते हुए गई हस्तिनापुर और भगवान से कहें कि ऐसा ऐसा हो गया, हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, इसने मारा है ऐसे ऐसे। भगवान आए फिर द्वारका, तो सुधन्वा को खोजे, वो भाग चला। ये पता चल गया कि कृष्ण आ रहे हैं, तो अब तो सुधन्वा के होश उड़ गए, तो मरना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्त्रियों ने देखा था कि वही वध कर रहा था रात्रि में, मणि छीना है। तो भगवान उसका वध किए तो उसके पास मणि नहीं था। बात यह थी कि वो पहले रक्षा के लिए आया अक्रूर जी के पास और कृतवर्मा के पास, कृतवर्मा के पास पहले आया, कहा कि देखो तुम्हारे कहने से मैं मणि की चोरी किया और सत्राजित की हत्या किया, अब तो कृष्ण बलराम आ रहे हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो कृतवर्मा कहता है देखो सावधान रहो, कभी भूल करके ये मत कहना कि हम इसमें कुछ कहे थे, हम क्या जानते थे, तुम इतना मूर्ख हो कि बात खुल जाएगी और कृष्ण बलराम जान जाएंगे, हमको ये पता नहीं था, हम कुछ नहीं कहे हैं, हम कुछ नहीं कहे हैं, जो तुम किए हो उसका फल भोगोगे। तुम तो कहे थे तुम उकसाए थे, चुप शैतान कहीं का, हम क्या जानते थे कि भगवान जान जाएंगे और भगवान से हम लड़ने जाएं, मरना पड़ेगा, तुमको पता नहीं सारा विश्व उनकी माया शक्ति से रचा जाता है, पाला जाता है, क्षण भर में क्या हो सकता है, भागो मेरे घर से भागो जल्दी। वो तो कोरा सा उत्तर दे दिए। श्रीपद अखंडानंद सरस्वती जी अनुवाद किए हैं हिंदी में, तो कहते हैं कि कृतवर्मा कोरा जवाब दे दिया और अक्रूर जी टक्का सा जवाब दे दिया दोनों जगह। तो अक्रूर जी के पास गया बिरमणी लेकर, अक्रूर जी बचाइए अब तो हम पर संकट हो गया, ये हो गया वो हो गया। अक्रूर जी कहते हैं तुमको पता है ना कंस जैसा महाबलवान थप्पड़ से केस पटक करके मार दिया भगवान ने, 7 दिन पहाड़ उठाए थे हाथ पर, तुमको ऐसा पता नहीं है? हमको क्या पता था कि तुम इतनी मूर्खता करोगे कि स्त्रियों के सामने तुम सत्राजीत का वध करोगे। उन लोगों ने देखा कि तुम जितना जल्दी हमारे घर से भागो, यहाँ से भागो भागो, ये पता चल जाएगा भगवान को कि अक्रूर यहाँ गया था तो हमसे भी एक्शन लेंगे, भागो। तो अक्रूर जी के घर में ही वहीं पर मणि फेंक करके भाग गया कि चलो जहाँ सामान पाया जाएगा वही मर्डरर सिद्ध हो। तो मणि फेंक दिया, अब तो धन का कौन मोह करने जाए, जान बची तो लाखों पाए, अब तो प्राण का मोह था ना, वो भाग गया। तो भगवान आए जो बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से, तो उसका वध किए, खोजे कहीं भी मणि नहीं मिला। और अक्रूर जी को क्या लोभ हुआ, वे मणि को कपड़े में लपेटे, उससे बहुत प्रकाश निकलता था, रख कर और फिर अपने अटैची में झोला में रखे और अपने मामा के यहाँ चले गए, भगवान से भेंट नहीं किए। एक गोपियों का साथ था इनको कुछ दिन दूर रहने, तो चले गए वहाँ यज्ञ करते थे करते थे। बाद में भगवान इनको बुलाए, पता लग गया कि मणि वहाँ है और अक्रूर जी का हाथ था इसमें, तो बुलाए पत्र लिखकर भगवान। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब अक्रूर जी आए सुधर्मा सभा में, तो भगवान ने कहा कि चाचा जी ये सारी घटनाएं जैसे घटी हैं हमको पता हो गया है, लेकिन आप विश्वास कीजिए हमें मणि का मोह नहीं है, मणि आप रखिए, क्योंकि आप यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, इसलिए आपके पास रहे, लेकिन मणि को ला करके सभा में दिखा दीजिए और आपको कैसे प्राप्त हुआ ये इतिहास बता दीजिए, क्योंकि हमारे भाई बलराम जी को भी मुझ पर संदेह हो रहा है कि मणि गड़बड़ हुआ है तो कहीं ये तो नहीं कराए या कुछ कराए। तो भगवान बहुत सत्कार किए, बहुत आदर के साथ अक्रूर जी से कहे। मैं ये कह रहा हूँ कि भूल चुक भी हो जाए तो भगवान आदर करना नहीं छोड़ते, बहुत आदर से जब बोले तो अक्रूर जी गए ठीक ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। घर से लाए मणि, दिखाए सभा में कि ये मणि रहे। कैसे आपको मिला चाचा जी? तो हमारे घर में वो सुधनवा फेंक करके चला गया। कैसे आपके घर में फेंक करके चला गया? ऐसा था कि हम और कीर्त वर्मा उसको कहे कि सत्राजीत का वध करके मणि छीन लो, इसी गलती हो गई थी हमने कहा था। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब लोग जान गए ना मणि कैसे मिली थी, और भगवान ने मणि अक्रूर जी को दे दिया, क्या आप मणि रखिए, क्योंकि आप यज्ञ करते हैं, अरे करते हो करते हैं, लेकिन अब कहें को अक्रूर जी रखने जाए दे दिए बाद में मणि उग्रसेन जी को। लेकिन भगवान ने कभी भी अक्रूर जी का तिरस्कार नहीं किया, हमेशा तात या चाचा कहते रहे। जब ब्रज से कृष्ण बलराम को लाए थे और गोपियों को एक शब्द भी सांत्वना नहीं दिए, तब गोपियों ने साफ दिया था कि जैसे हम प्रियतम के विरह में रो रही वैसे तुम भी कृष्ण से दूर रहोगे। कम से कम इनको सांत्वना देनी चाहिए थी कि बच्चियों शांत रहो चुप रहो, जैसे ले जा रहा हूँ रथ पर वैसे लेकर के आ जाऊँगा, लेकिन अक्रूर जी कुछ बोले ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये अभी मरे चाहे कुछ भी हो इनसे बोलना ठीक नहीं, क्योंकि बोलूँगा तो ये जाने नहीं देंगे कृष्ण को, तो इसलिए वो कुछ कहे ही नहीं, ये अपराध लगा। तो अम्बुजेक्षण शब्द के द्वारा भगवान के समस्त गुण सुंदरता आदि व्यक्त हैं, वास्तव में कृष्ण भजनीय है, उन्हीं में पराभक्ति हो सकती है और किसी आस्पद में नहीं, और किसी विषय में ऐसी हो नहीं सकती, कोई ऐसा नहीं है जिसमें पराभक्ति हो सके, केवल भगवान नारायण में संभव है। इसीलिए यह वर्णन कर रहे हैं भगवती अम्बुजेक्षण, भगवती ब्रजे भगवत्ता प्रकटन परे अम्बुजेक्षण कमल नये नये पराम भक्ति विपगत एवं एतद अचिंतयत्। एवं का अर्थ है इस प्रकार और एतद का अर्थ है यह, अचिंतयत् स्मरण करने लगे, सुचिंतन करते हुए जा रहे हैं, रथ पर बैठे हैं, एक बार भी घोड़ों को वे हाँके नहीं, क्योंकि इनका मन जो था तो पहले ही चला गया ब्रज में, घोड़े तो बाद में पहुंचेंगे, यह रथ तो बाद में पहुंचेगा, मन जो था वो मनोरथ के साथ पहुंच गया ब्रज में। एवं एतद अचिंत्य, एवं इस प्रकार यह सोचने लगे। तो एवं का अर्थ है अपने विषय में सोचते थे, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तप, यह जो है एवं शब्द इस प्रकार। और द्रक्ष्या में नूनम सुकपोल नासिकम इत्यादि, मैं भगवान को ऐसे देखूंगा, उनका चरण देखूंगा, ये करूंगा, ये जो है वो एतद शब्द द्वारा व्यक्त किया गया। अपने विषय में जब सोचते हैं तो एवं, और एतद जो डायरेक्ट यह सोच रहे हैं वो है भगवत संबंधी विचार। तो दो तरह का चिंतन शुरू में कर रहे हैं, एक तो अपने विषय में और भगवान के विषय में, बाद में केवल भगवत चिंतन ही करते रहेंगे, अपने विषय में सोचना छोड़ देंगे। एवं एतद अचिंतयत्, इस प्रकार से सोचने लगे। तो सोच रहे हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम जद्रक्ष्याम अद्य केशवम जद अद्य अहम केशवम द्रक्ष्यामि, आज मैं केशव को देखूंगा, जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक हैं और जिन्होंने अभी अभी केशी दैत्य का वध किया है। अभी इनको ये पता नहीं है केशी दैत्य के वध का, लेकिन इनके जिह्वा से सरस्वती इस तरह फुरना दे रही, अथवा जिनके केश बहुत सुंदर हैं, घुंघराले केश हैं, और केश व का अर्थ है वधनाति, वयते वधनाति, भगवान कृष्ण केशों का श्रृंगार करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपना केश भी वह बहुत देर तक श्रृंगार करते हैं, और कोटि कोटि जीव तो भगवान के केशों को देह कर्म पर निछावर हो जाते हैं, उनके एक एक अंग की अद्भुत विशेषता है, केवल कोई केश भी देखे तो सब कुछ भूल जाता है और भगवान में अनुरक्त हो जाता है। तो आज मैं केशव को देखूंगा, तो केशव का दर्शन करूंगा, मेरा इतना बड़ा भाग्य है, मैंने क्या सुकृत किया था, किम मया चरितम भद्रम, मया किम भद्रम आचरितम, नाना संचारी भाव मन में आ रहे हैं, अपी संभावना के अर्थ में है, सवितर्क सोच रहे हैं, मैंने क्या किया है, क्या पुण्य किया है। अपने विषय में जब अक्रूर जी सोचते हैं तो उनको यही ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो कोई सुकृत नहीं किया, जहाँ तक मुझे स्मरण है मैं पाप के अलावा इस जीवन में कुछ नहीं किया, कंस के निर्बंध से बाध्य होकर के मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, यही मथुरा में रहते ही जानता हूँ कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर भगवान है, लेकिन मैं कंस की सेवा कर रहा था, अब ये विचार आ रहा है। तो मया किम भद्रम आचरितम, भद्रम यज्ञादि सत्कर्म, भद्रम का अर्थ है अच्छा कर्म, मंगलमय कर्म, तो यज्ञ आदि कर्म मैं क्या किया हूँ, कुछ किया हूँ जरूर, क्योंकि बिना इसके, बिना पुण्य के कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता, ये सोच रहे हैं। परंतु इस जीवन में दिमाग लगाने पर भी नहीं डेट याद आ रहा है कि किसी दिन कुछ अच्छा काम किया, कंस की सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, कौन अच्छा कार्य, कंस की सेवा कर रहे थे तो कंस तो सारा प्लान बना रहा था देवताओं के विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध, जब भगवान के माता पिता को कारागृह में बंद किया था और उनके जन्मे हुए बच्चों को मारता था, उसका साथ दे रहे थे रात दिन, तब कहाँ से सुकृत होगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः, मैंने कौन सा उत्कृष्ट तप किया है, तप का अर्थ है चित्त की एकाग्रता अथवा सर्वभूता भय प्रदान, सभी जीवों को अभय देना अर्थात उनको सुख देना, इसको तप कहा गया। बहुत प्रकार के तप है, जैसे वाणी का तप है, मन का तप है, शरीर से तप है, शरीर से सभी जीवों को सुख देना, किसी को दुख न देना, वाणी से किसी को उद्वेग में डालने वाला वचन न बोलना, सबको सुखी करने वाला वचन बोलना, यह तप है, अनुद्वेग कर्म वाक्य। लेकिन मनुष्य को आप देखते हैं कैसा स्वभाव होता है, वो सोचता है कि हम दूसरे को कठोर बोलेंगे तब हमको कुछ राहत मिले, तब हमको कुछ अच्छा लगेगा, चैन की सांस लेंगे, दूसरे को कठोर बोल करके, निंदा करके। और कुछ लोगों का तो ऐसा स्वभाव है कि जब तक दूसरे की निंदा सवेरे शाम नहीं कर लेंगे तब तक लगेगा कि उनका कुछ खो गया है, एकदम मन सुना सुना लगेगा, जब कहीं निंदा कर लेंगे तब पेट भर जाएगा, हाँ कुछ हो गया, वेद पाठ हो गया, कम से कम भक्तमाल हो गया। तो किसी को कभी दुख देने वाला वचन मैं नहीं बोला हूँ, इसको परम तप कहता है। अथवा परम तप का अर्थ है भगवत आराधन लक्षणम तप। परम शब्द के द्वारा ऐसी द्वारा एक उत्कृष्ट तप, अर्थात भगवान का नाम जप किया हूँ, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोला हूँ, भगवान की पूजा किया हूँ, क्या किया हूँ, अथवा परम शब्द भद्रम में भी लगेगा। उत्कृष्ट, कौन सा शुभ कर्म किया हूँ, कौन सा दान दिया हूँ, कौन सा तप किया हूँ, कौन वेदाध्ययन किया हूँ, तीर्थ स्नान किया हूँ, क्या कुआं खुदवाया हूँ, अन्न क्षेत्र चलाया हूँ, क्या किया हूँ, कौन सा पुण्य है कि आज मैं केशव को देखूँगा, द्रक्ष्यामि अद्य केशव, मैं केशव को देखूँगा, कौन सा पुण्य किया। तो फिर मन में आया कि ननु तथापि बिना महद अनुग्रहेण न तत्सिद्धे, इत्याशंक्य पक्षांतरम चिंतयति। इनके मन में आया कि नहीं नहीं, किसी भी शुभ कर्म में वो ताकत नहीं है, तपस्या में वो शक्ति नहीं है कि भगवान कृष्ण का दर्शन मिले। यह तो किसी महत् पुरुष के अनुग्रह से ही संभव है, किसी साधु की कृपा से ही संभव है कि भगवान का दर्शन हो सकता है। तब कहते हैं किं वा था पर्यते दत्तम जद्रक्षा मध्य केशवम, वा थ अथवा, उसको वा पहले लगाकर अथ लगाए, वा अथवा अथवा दोनों का एक ही अर्थ हुआ। अथवा अर्हते योग्याय, किसी योग्य पात्र को मैंने क्या दान दिया है कि मुझे कृष्ण का दर्शन मिलेगा, किसी महत् पुरुष की मैंने क्या सेवा की है, किसी साधु की क्या सेवा की है, केशव को देखूंगा। तो ये जो उत्तर पक्ष है लास्ट में, यही सबसे बलवान साधन है भगवान को देखने का। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान का दर्शन चाहता है तो उसे चाहिए कि महत् पुरुषों के अनुग्रह की कामना करे और उनको प्राप्त करने की चेष्टा करे। पहले तो मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि श्रेष्ठ साधुओं का आशीर्वाद मुझे मिले, ये इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा होने के बाद उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए कि सेवा करनी चाहिए, तो उससे उनके हृदय से जो आशीर्वाद प्रकट होता है उससे भगवान मिलते हैं, भगवान के मिलने का यह उपाय है। श्री नारद जी ने ध्रुव महाराज को भेजा कि जाओ मधुबन में तप करो, इस तरह भजन करो, तो वास्तव में भजन से भगवान मिले, लेकिन उसमें मुख्य कारण था नारद जी का अनुकूल्य, नारद जी का अनुग्रह ही मुख्य था। नारद जी चाह गए, उनके हृदय में इच्छा हो गई कि इस बच्चे को भगवान मिलना चाहिए, इसलिए मिले भगवान। ये महद अनुग्रह में शक्ति है। अज्ञात दशा में ही किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा होती है, साधुओं की सेवा होती है, तो उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ने लगती है। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैंने किस योग्यतम पात्र को, साधुओं की मैंने क्या सेवा की है जिससे कि भगवान कृष्ण का मैं दर्शन करूंगा। फल इतना महान है कि साधन की कल्पना करें, साधन भी उसी तरह का हुआ होगा तब ना भगवान का दर्शन करूंगा, इस तरह से सोच रहे। यह एवं शब्द के द्वारा व्यक्त हो रहा है। फिर मन में यह विचार आ रहा है, नहीं मैं चल दिया हूँ मथुरा से ब्रज में, लेकिन भगवान मुझसे नहीं भेंट करेंगे, ये सोच रहे हैं। नहीं, मैं चल रहा हूँ लेकिन मुझ पापी को उत्तम श्लोक दर्शन नहीं देंगे, भेंट नहीं करेंगे भगवान हमसे, यह कह रहे हैं। और ये चौथे श्लोक में और पांचवे में कहते हैं नहीं नहीं, अच्युत मुझे जरूर दर्शन देंगे। जब भगवान का उत्तम श्लोक नाम याद आ रहा है तब कहते हैं तब भेंट नहीं हो, लेकिन अच्युत नाम याद आ रहा है तब कहते हाँ हाँ दर्शन हो गए। ममैत दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। शूद्र जन्मनः, शूद्रात् जन्म जस्य तस्य, किसी व्यक्ति का यदि शूद्र से जन्म हुआ है तो उस व्यक्ति के लिए यथा ब्रह्म कीर्तनम दुर्लभम, वेद का उच्चारण जैसे दुर्लभ है, उसी प्रकार मुझ विषयात्मा के लिए उत्तम श्लोक का यह दर्शन दुर्लभ। विषयात्मा कह रहे हैं अपने को, विषयात्मा, विषयाविष्ट चित्तस्य। विषय के दो अर्थ होते हैं, एक तो साधारण भोग और विषय का अर्थ होता है राज्य, राज्य सुख का लोभ। तो मैं विषय में आविष्ट रहा हूँ, विषय भोग में रहा हूँ, मैं पापी हूँ, इस तरह से मेरा हृदय दूषित है, कलुषित। यह बात वास्तव में सही नहीं थी अक्रूर जी के लिए, सहज दैन्य से सोच रहे हैं। जैसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे परम भक्ति उपगत, ये तो परा भक्ति को प्राप्त थे, परंतु भक्ति के कारण सहज दैन उत्पन्न हो रहा है, तो कहते हैं मैं विषयात्मा हूँ, विषय भोग में राज्य के लोभ से मैं अपना जीवन गंवा दिया, हरि हरि विफल जन्म गवाई नूं, और मुझे उत्तम श्लोक का दर्शन नहीं होगा। ये रथ पर यही सोचते जा रहे हैं, शुरू में सोचे तो दृष्टांत दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति का यदि शूद्र से जन्म हुआ है तो उसके लिए जैसे वेद के ऋचा भाग का उच्चारण करना असंभव, जैसे दुर्लभ, तो उसी तरह से उत्तम श्लोक का दर्शन मेरे लिए दुर्लभ। क्यों भगवान को उत्तम श्लोक कह रहे हैं? इसका भाव ये है कि उत्तम ही ब्रह्मादि भी श्लोक्यते कीर्त्यते इति उत्तम श्लोक, कीर्त्यते मात्र न तो दृश्यते। उत्तम श्लोक, उत्तम जो ब्रह्मा जी भगवान शिव या इंद्रदेव नारद आदि हैं, इनको उत्तम कहा गया है, और इन उत्तमों के द्वारा भगवान के कीर्ति का गान मात्र होता है, केवल गीत गाते रहते हैं भगवान, लेकिन दर्शन बहुत कम होता है, दुर्लभ दर्शन है। जब ब्रह्मा जी को भी दर्शन दुर्लभ है, भगवान शिव के लिए भी कृष्ण का दर्शन दुर्लभ है, तो मुझ विषयात्मा को कैसे दर्शन हो सकते हैं? मैं क्या किया हूँ? मैं तो जहाँ तक याद है केवल कंस के हाँ में हाँ मिलाया हूँ, दुराचार किया हूँ, मुझे दर्शन नहीं होगा। जब अपने तरफ दृष्टि आ रही है तो पूर्ण नैराश्य छा रहा है, पूरी निराश, नहीं होगा दर्शन। उत्तम श्लोक का अर्थ जो बहुत यशस्वी हैं, जिनका यश बहुत उत्तम छंदों में गाया गया है, वेदों में गाया गया है, उत्तम लोग गाते हैं, अथवा जिनका यश तम को दूर कर देता है, माया के प्रभाव को निरस्त कर देता है, जिनका ऐसा श्लोक है, जिनका ऐसा यश है, ऐसे परम उत्कृष्ट प्रभु को मेरे जैसा निकृष्ट कीट कैसे देख पाएगा? मुझे दर्शन नहीं हो पाएगा भगवान का। लेकिन फिर भाव बदलता है तो कहते हैं माँ एवं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, जैसे पहले कहे उसको कहते हैं माँ एवं, माँ एवं एवं माँ, ऐसी बात नहीं है। ममाधमस्यापि स्या देवाच्युत दर्शन, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्युत का दर्शन होगा ही। स्यात एव मम अधमस्यापि अच्युत दर्शनम स्यात एव, ये दर्शन होगा। अब भगवान की लीलाएं याद आने लगी कि किस प्रकार उन्होंने कृपा की है विविध जीवों पर, इसीलिए इसमें अच्युत कहा गया है भगवान को। मैवं ममाधमस्यापि स्यादेव अच्युत दर्शनम ह्रियमाण कालनद्या क्वचित तरति कश्चन, ऐसी बात नहीं है कि मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, अवश्य होगा। स्यादेव किसका दर्शन होगा? अच्युत का, उत्तम श्लोक का नहीं। तो उत्तम श्लोक जब नाम याद आ रहा है, गुण याद आ रहा है, तो सोचता रही वे कितने महान भगवान और मैं कितना है, लेकिन जब अच्युत यह गुण याद आ रहा है तो आश्वासन हो रहा है। रथ पर बैठे बैठे रथ चल रहा है और मनोरथ भी चल रहा है साथ, रथ तो धरती पर चल रहा है, मनोरथ कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो कहते हैं मुझे अच्युत का दर्शन होगा। अच्युत का अर्थ है जो अपने कृपालुत्व आदि स्वभाव से महात्म से कभी च्युत नहीं होते, कृपा करने से भगवान कभी च्युत हो ही नहीं सकते, तब उनकी लीलाएं अक्रूर जी के हृदय में धारावाहिक याद आने लगी। जैसे पूतना, अब याद कर रहे हैं कि पूतना ने कौन सा साधन किया, वो तो भगवान को मारने गई थी, अपने अस्तन में विष लगा करके मारने गई थी, लेकिन वह भी तर गई। भव नदी के पार तत्कुलायमान हरि प्राप्त, इस नदी के पार, भव नदी के पार बहुत से जीव हुए हैं, तब आशा बंद रही। भगवान के स्वभाव की याद करके, भगवान के कृपा की याद करके भक्तों को बहुत आशा हो जाती है, लेकिन जब अपनी साधना अपनी स्थिति देखते हैं तब नैराश्य छा जाता है, अपने भगवान का दर्शन नहीं होगा मुझे। लेकिन भगवान का गुण याद आने पर तब उत्साह बढ़ता है। और वास्तव में साधन की ओर नहीं देखना चाहिए, भगवान के स्वभाव से, भगवान की कृपा से ही भगवान मिलेंगे किसी भी जीव को। जो व्यक्ति साधन का अभिमान करता है भगवान उसको मिलते नहीं है। अक्रूर जी इसी गुण पर विचार कर रहे हैं, क्वचित तरति कश्चन, इस पर श्रील जीव गोस्वामी जी टीका लिखते हैं, क्वचित नाम संकेत नाम ग्रहणा दो, क्वचित किसी स्थिति में, कश्चन अजामिलादि, जैसे किस स्थिति में अजामिल पार हो गया, क्या वह पार होने वाला था? संकेत नाम ग्रहणा दो, संकेत नाम लिया, अपने पुत्र का नाम लिया, वह मरने के हालत में अजामिल था, पुत्र का नाम लिया, नारायण आया और उसी पर भगवान के पार्षद आ गए चार, और वह पार हो गया। कोई ठीक नहीं है कब किस पर भगवान की दया हो जाएगी और पार हो जाएगा, तो मुझ पर अब भगवान की कृपा हो चुकी है, अन्यथा कौन से जैसा व्यक्ति मुझको कहे कि जाओ ब्रज में, ये कैसे हो सकता है। कई लक्षण अपने में देख रहे हैं, जो कंस हमें बांध करके रखा था वहाँ, और जो कंस भगवान का द्रोही है, आज मुझको वो रथ दे रहा है और कहता है जाओ 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 ब्रज में जाओ। तो कंस जैसा वैरी द्रोही जब कृष्ण के पास जाने में सहायक बन रहा है, तो इसी से पता लग गया कि भगवान की कृपा मुझ पर पूरी पूरी हो चुकी। यह सब कृष्ण की कृपा है कि कंस के हृदय में प्रेरणा दिए और आज मैं उनको जा रहा हूँ देखने, तो अवश्य दर्शन होगा। भगवान का ये स्वभाव गुण है। तो श्रीपद जीव गोस्वामी जी कहते हैं क्वचि संकेत नाम ग्रहणा दऊ, और श्रीपद सनातन गोस्वामी जी अर्थ लिखते हैं सत्तीर्था दऊ क्वचित। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कोई व्यक्ति कुछ साधन नहीं किया है और कहीं वृंदावन आदि तीर्थ में पड़ा हुआ है, उसे भगवान मिल जाते हैं जो क्वचित किसी परिस्थिति में। हमने पढ़ा है पद्म पुराण में, एक व्यक्ति बैलगाड़ी हाँक करके जा रहा था, बैलगाड़ी चला रहा था, चलाते चलाते तब तक बैल मार दिया सिंह से और गाड़ी वाला गिर गया, और पापी व्यक्ति था, उसको लेने के लिए जमराज के दूत आए, लेकिन अकस्मात वो गिरा तो एक तुलसी के पौधा पर गिर गया, तुलसी का प्लांट था उस पर उसका कुछ शरीर सट गया जैसे गिरा। तब जमराज के दूत भाग कर दूर खड़े हो गए, अब हम इसको कैसे उठा कर ले, और उधर नोटिस था जमराज जी का कि उसको लाना है, लेकिन अब तुलसी पर गिरे हुए को छूने का साहस नहीं कर सकते किसी तरह से, अगर वो हटे वहाँ से तब, लेकिन जब वो मरा तब भी तुलसी पर सटा हुआ था, इसलिए जमराज के दूत जाकर जमराज जी से कहे कि तो ऐसी ऐसी बात हो गई और वो तो तुलसी पर गिरा हुआ है, हम कैसे छुए। तो भगवान जमराज ने कहा कि छोड़, बाद में गरुण जी आए उसको उठा करके ले। यह बिल्कुल सत्य कथा है, भगवान कब किस पर कैसे कृपा करेंगे कोई जानता नहीं है। क्वचित कश्चना, कश्चना करता और क्वचित परिस्थिति, किस परिस्थिति में कौन भगवान को पा जाएगा कोई ठीक नहीं रहता, भगवान की कृपा कैसे हो जाएगी। तो जीव गोस्वामी जी पुनः लिखते हैं क्वचित अभिमुख गमना दो, केवल भगवान के सामने कोई आ जाए बस वो पार हो जाता है। जथा कश्चना पूतना दी लिखते हैं, पूतना कोई साधन नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, पर क्वचित किसी स्थिति में वो भगवान के सामने आ गई, बस इतना ही हुआ। अभिमुख गमना दो, सामने आ गई, और आने पर भगवान ने उस पर कृपा की, कितनी कृपा की कि उसे अपनी माँ बना लिए नित्य लीला में। जिस सिद्धि को बड़े बड़े योगी चाहते, उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि जिस सिद्धि को योगी जन चाहते हैं उसको तो शिशुपाल पा गया, और पूतना को भगवान ने मातृ गति दिया, ओहो ऐसा दयालु कौन है। तो देखा गया है कि भगवान की कृपा बिना साधन के ही, साधनहीन लोगों को भी प्राप्त हुई है, तो हमको भी भगवान जरूर मिलेंगे। भगवान के गुणों की याद करके तब आश्वासन हो रहा, अवश्य मिलेंगे, अन्यथा इतिहास बता रहा है कि पूतना ने कोई साधन नहीं किया, शक्टासुर ने कुछ भी साधन नहीं किया, बकासुर अघासुर काली आदि कोई, लेकिन जिस किसी तरह से भगवान के निकट पहुंच गए, गए केवल, कोई भगवान के लीला धाम में पड़ा हुआ था जैसे काली, काली तो कुछ नहीं किया था बल्कि बहुत दुख दिया था, बहुत से जीव मर जाते थे, ऐसा भागवत में वर्णन है कि काली दह उसके विष की ज्वाला से उबलता रहता था और ऊपर उड़ने वाले पक्षी झुलस करके मर जाते, और आसपास के सब वृक्ष मर गए थे, जल की उर्मियाँ जब जाते, जल के सीकर जाते थे तो वो मर जाते थे वृक्ष। तो कितना भयावह विष रखा था काली, जब उसके विष से युक्त जल के स्पर्श से पक्षी मर जाते थे, हवा के स्पर्श, और वृक्ष झुलस जाते थे, लेकिन उस पर भी भगवान ने उसे अपना चरण कमल दिया। और को तो कोई आश्चर्य होता रहे, कालिये की पत्नियां स्वयं आश्चर्य में डूब गई थी, कस्यानुभाव शनदेव विद्महे तवांग्रेणु स्पर्शाधिकार जदवान छया श्री ललना चरत तपो विहाय भोगान सुशीलम धीतम लता। अहो जिस चरण रज के लिए श्री जी यहाँ बेल वन में तपस्या करती हैं बेचारी, उपवास रह करके अनेक व्रतों का पालन कर रही हैं, नियम ले करके धृत व्रता व्रत धारण करके तप कर रही हैं, और उनको चरण रज नहीं मिला। ये हमारे पति कौन सा काम किया था, कौन सा सुकृत किया था कि इसको आपके चरण रेणु के स्पर्श का अधिकार मिला? कोई तप नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। ये भगवान का स्वभाव है, किसी पर भी वो कृपा कभी कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों के द्वारा भगवान के गुण और स्वभाव को जानना चाहिए। तो अक्रूर जी इस तरह भगवान के गुण याद कर रहे हैं कि अवश्य मुझे मिलेंगे। जैसा भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी लिखे हैं, भाव के अंकुर, जिसमें भाव का अंकुर उग जाता है उस व्यक्ति में ये नौ लक्षण देखे जाते हैं। तो उसमें वे कहते हैं आशा बंध, आशा बंध भगवत प्राप्ति, भगवत दृढ़, भगवत प्राप्ति दृढ़ा, कुछ ऐसे शब्द। भगवान मिलेंगे मिलेंगे, यह आशा का बंधन हो जाता है। प्रियतम श्री कृष्ण जरूर मिलेंगे, ये आशा जाती ही नहीं है। इस विषय में उन्होंने श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमें वो कहते हैं, न प्रेमा श्रवणादि भक्ति रपिवा जोगो अथवा वैष्णव ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदपि सज्जातिरप्यस्तिवा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा अच्छेद मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, हे गोपी जन वल्लभ, हे गोपियों के प्राणनाथ, मुझमें प्रेम नहीं है आपके चरणों के प्रति। न प्रेमा, मुझमें प्रेम नहीं है, न श्रवणादि भक्ति, और न तो श्रवण कीर्तनादि भक्ति मैं किया, न प्रेम है न भक्ति कर रहा, और न तो वैष्णव योग का आश्रय लिया। जो अष्टांग योग है उसको वैष्णव योग कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ही उसमें आराध्य हैं। तो मैं वैष्णव योग का अनुष्ठान नहीं किया, मुझमें प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। न ज्ञानम, ज्ञानम वा शुभ कर्म, कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों का न आपका, और न तो कोई शुभ कर्म किया हूँ, दान आदि नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया हूँ। लेकिन हे गोपी जन वल्लभ, आप में जो मेरी आशा है लग गई है कि आप मिलेंगे, ये आशा ही मुझे व्यथित कर रही है, हृदय से जा नहीं रही। अच्छेद्य मूला, इसका मूल छेदन हो नहीं रहा है। अपने तरफ देखता हूँ तो देख पाता हूँ कुछ किया नहीं हो, कुछ किया नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके तरफ जब देखता हूँ तो आपकी आशा नहीं जाती है, यह आशा लगी रहती है कि आप जरूर मिलेंगे, आशा जा नहीं रही है। क्यों? कि हीनार्थाधिक साधके त्वयि, क्योंकि आप हीनार्थ, हीनार्थाधिक साधक है। हीनार्थ, हीनार्थ का अर्थ होता है जो व्यक्ति बहुत तुच्छ अर्थ चाहता है, धर्म अर्थ काम मुक्ति चाहता है, इसको हीनार्थ कहते हैं। हीन अर्थ चाहता है, थोड़ी चीज चाहता है, लेकिन भगवान उसको बहुत अधिक देते हैं। भगवान किसी की इच्छा को नहीं देखते हैं कितनी इच्छा है, भगवान अपने तरफ देखते हैं कि हमें देने की कितनी शक्ति है। मांगने वाले को बेचारे को बुद्धि न हो तो क्या भगवान भी नहीं देंगे क्या है? भगवान सदा अपने पोजिशन को देखते हैं, इसीलिए निश्चिंत भगवान के पास जाना चाहिए। कोई कामना से भी जा रहा है तो घाटा नहीं लगेगा। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तिव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। यही तो भगवान की बहुत वास्तव में गुणावली है, खूबी है, कि बेचारे दीनहीन जीव की दशा को देख करके उसकी इच्छा के अनुसार नहीं देते हैं, इच्छा से बहुत अधिक देते हैं। कहने का से या बहुत अधिक देते हैं। वो श्लोक जो नारद जी बोले हैं पंचम स्कंध में, सत्यम दिशत अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थतो जन पुनरर्थिता जत स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लव। यह बात जरूर है कि भगवान की कोई कामना रह करके कोई भगवान का भजन करता है तो भगवान उसकी कामना पूरी करते हैं, लेकिन वास्तव में वो उसकी कामना पूरी करना परम पुरुषार्थ का दान नहीं है, क्योंकि पुनः अर्थिता, उसमें अर्थिता बनी रहती है, फिर भी पाने की लालसा बनी रहती है। इसलिए भगवान स्वयं ही अपना चरण कमल देते हैं, और जो निष्काम भाव से भजन करते हैं उनको चरण कमल देते हैं, जो सकाम भाव से भजन करते हैं उनको उनकी वस्तु देते हैं, और ऊपर से अपना चरण कमल भी देते हैं। ये भगवान का स्वभाव। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भगवान सोचते हैं कि कोई मेरा भजन करता है और विषय सुख मांगता है। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बर मूर्ख। भगवान सोचते हैं कि ये मेरा भजन कर रहा है और विषय सुख मांग रहा है, तो अमृत छोड़ करके विष मांग रहा है, तो ये तो मूर्ख है। पर आमी विज्ञ यही मूर्ख है, विषय के ने दे स्वचरण अमृत दिया विषय भुलाए। अरे ये तो मूर्ख है, जहर मांग रहा है, मैं क्यों जहर दूंगा, मैं तो अपना चरणामृत दूंगा, अपने आप को दूंगा, और इसको पा करके विषय को भूल जाएगा। ये भगवान का स्वभाव है, इसी स्वभाव की याद कर रहे हैं अक्रूर जी। ये सोच रहे हैं भगवान हमारे साधन को नहीं देखेंगे। आगे चल करके वे यह भी कहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि कंस का दूत है, मेरे बैरी का, मेरे शत्रु का आदमी है, और इसलिए इससे बात नहीं करेंगे। फिर कहते हैं नहीं, जो सबके हृदय में भगवान रहते हैं वो हमारे भाव को समझ जाएंगे। मैं कंस के साथ रहा हूँ लेकिन कंस का नहीं हूँ, मैं कृष्ण का, या अक्रूर जी सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर उक्ति दे रहे हैं कि ह्रिय मार काल नद्या क्वचित तरति कश्चन, एक दृष्टांत द्वारा साधित कर रहे हैं। कभी कभी लकड़ियाँ बहती हैं नदियों में बरसात के दिन में, तृण आदि बहते हैं नदी के तट पर, जिनका गांव होगा या कभी नदी में देखे होंगे बाढ़, खास करके लकड़ियाँ बहते हैं, तो इस बात को जल्दी समझें। कभी कभी लकड़ियाँ बिना प्रयास के ही तट पर लग जाती हैं। यदि मान लीजिए उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कोई नदी बह रही है या उत्तर से दक्षिण बह रही है, तो उस समय यदि पुरवैया हवा चले जोर से तो बहुत सी लकड़ियाँ पश्चिम तट पर लग जाएंगी। यद्यपि ह्रिय मारा काल नद्या, नदी के द्वारा वो लकड़ियाँ भाई जा रही हैं, बहुत वेग होता है बरसात के दिन में धारा में, तो हम लोगों ने देखा है कई बार कई वर्ष लकड़ियाँ बहुत जोर से बहती जाती हैं, और तट पर लोग निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ लकड़ियाँ नहीं निकल पाती। कभी कभी किसी लकड़ी को पकड़ लेते हैं, जब हवा विपरीत होती उधर से आती है तो इधर लकड़ियाँ आ जाती हैं, निकाल लेते हैं। तो ह्रिय माण इससे के द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि परबस है जीव, संसार जी माण है, अभी अपने कर्मानुसार जन्म लिया है इस शरीर में, फिर भूख है, प्यास है, रोग बुढ़ापा आदि भोग रहा है, पर पता नहीं कहीं यदि झोंका आवे हवा का, कोई सत्संग आवे, भागवत सप्ताह आवे, तो तत्कुलाय मानम हरिम प्राप्नोति, इस भव नदी के पार कृष्ण को पा जाएगा। कोई ठीक नहीं है कब भगवान कहाँ कृपा करेंगे, किस साधु द्वारा या धाम द्वारा, नाम द्वारा, प्रसाद द्वारा, कब कहाँ कृपा हो जाएगी, कब किसका मन भगवान में लग जाएगा, ये तो भगवान ही जानते। लकड़ी हिमालय से बह करके जा रही है, अब कहाँ लगेगी, कानपुर में लगेगी कि इलाहाबाद में या हरिद्वार में ही तट पर लग जाएगी, कोई ठीक नहीं। हम लोग भी इस भाव नदी में बह रहे हैं, अक्रूर जिसको काल नदी कह रहे हैं, काल नदी, काल प्रवाह, वास्तव में काल किस तरह प्रवाहित है। अब देखिए अभी तत्कालिक गणना के अनुसार देखें तो ये 2002 हो गया, तो बदल रहा है, वर्ष बदल रहा है, दिन बदल रहा है, महीना बदल रहा है, हमारा देह बदल रहा है, परिवार बदल रहा है, सब जीव आज यहाँ जन्म लिया है, कल पता नहीं काल वेग से कहाँ चला जाएगा, कोई ठीक नहीं। जो बह ही रहा है, जा ही रहा है, तो पहले दूसरे शरीर में था, अभी शरीर में है, फिर दूसरे शरीर में जाएगा, कहीं भूख प्यास मान अपमान ये सब सहना पड़ता है, इसको काल नदी कहते हैं कि जीव बह रहा है, बह रहा है, लेकिन कहीं भगवत कृपा से तट पर लग सकता है, भगवान को पा सकता है। बहुत सुंदर, यद्यपि जीव गोस्वामी ने दो उदाहरण दिया है परंतु उसमें आदो लगाए, पूत ना दी अजामिला दी, क्या अजामिल जानता था कि उसे भगवान मिलेंगे, कभी सोचा भी था कि भगवान मिलना चाहिए, मन में कभी संकल्प नहीं किया था। 88 साल की अवस्था में वो शैतान अपने पुत्र में आसक्त था, 88 साल का था और उसका लड़का मरते समय 5 साल का था, तो 83 वर्ष की उम्र में तो पुत्र पैदा किया था, यूँ कोई पुत्र उत्पन्न करने का समय है। और इसीलिए बच्चे में बहुत आसक्ति थी, उसी को खिलाता था। लेकिन संजोग बस कुछ क्या उससे हो गया शुभ कर्म कि नाम हो गया बच्चे का नारायण, इसीलिए शुरू से ही नारायण नारायण बोलने लगा अनजान में। जन्म के पाप ध्वस्त हो गए एक बार नारायण कहने से, और वो तो हजारों बार कहा था, नारायण खाया कि नहीं, नारायण माता की गोद से मेरे गोद में आओ, ऐसा चक्रवर्ती पाची ने लिखा। प्रथम बार जब नारायण नामकरण हुआ बच्चे का तो अजामिल बोला, नारायण मातुः अंकात ममांकम आगच्छ, माँ के अंक से गोद से मेरे गोद में आओ। उसी समय कोटि कोटि जन्मों का उसका सारा पाप ध्वस्त हो गया, इसमें संदेह नहीं है। यदि मान लीजिए किसी कोठरी में किसी कमरे में 4-5 लाख वर्ष से अंधकार हो, तो क्या मान लीजिए उसमें बिजली आवे बल्ब लगाया जाए तो स्विच ऑन करने पर अंधकार कहेगा कि मैं लाखों वर्ष से रहा हूँ नहीं भागूंगा? कह सकता है? स्विच ऑन हुआ कि अंधकार को जाना है, ये स्विच है जिह्वा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। उस व्यक्ति में पाप ठहर ही नहीं सकते, एक देह की बात नहीं है, कोटि कोटि जन्मों का पाप नहीं ठहर सकता है जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम होता है। अहो बतस्व पचोतो गरीया जब जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, माता देहूति कह रही, जिसके जिह्वा के अग्र भाग पर आपका एक नाम भी विराजता है वह स्वपच भी बहुत महान है, वह चंडाल भी बहुत महान है। और जो लोग निरंतर जपते हैं वे तो सब वेद पढ़ चुके, तीर्थों में स्नान कर चुके, हवन यज्ञ कर चुके, दान दे चुके, सारा जो भी शास्त्रों में वर्णित है। यह है भगवान के नाम का प्रभाव। अजामिल बेचारा इस बात कुछ भी नहीं जानता था, मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ था, जमराज के दूतों को देख करके वो डर गया और अपने बेटा को स्नेह से पुकारा, लेकिन कुछ उस स्थिति में भगवान के पार्षद आ गए। इसको कहते हैं क्वचित तरति कश्चनः, भगवान का नाम वो अनजान में ले रहा था तर गया। तो इस तरह से केवल नामाभास से जब व्यक्ति समस्त पापों से दूर हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी उसकी, तो मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो वर्षों से भगवान की पूजा किया हूँ और उन्हीं को अपना इष्ट देव मानता हूँ, मुझे क्यों नहीं दर्शन देंगे, यह भाव। जब अजामिल उनके उनका संग पा सकता है, तर सकता है, मैं क्यों नहीं तरूंगा। सौक्रूर जी तो कृष्ण के दर्शन के लिए ही कंस की नौकरी कर रहे थे। चपूतना, ये सब कथाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और भी भागवत में बहुत दृष्टांत दिए गए हैं किस तरह भगवान ने कृपा किया। पूतना ने कोई तप कोई साधन कोई दान किया था, उल्टे वो भगवान को मारने गए थे विष लगा करके, लेकिन भगवान अपने स्वभाव से बाध्य हैं। ऐसे ही संसार में देखा जाता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव है, आप बदल नहीं सकते, वैसे ही भगवान का स्वभाव कोई बदल नहीं पाएगा। कोई कुछ भी द्रोह करे उनको मारने जाए, लेकिन कृपा करत्व आदि जो उनका स्वभाव है वो जा नहीं सकता है। पूतना को अपनी माँ बना लिए, दूध पीने लगे तो पीने लगे, और उसका तामस देह छूट गया, नित्य लीला में भगवान की माँ हो गई। लेभे गतिम धातुचितम तत्म कमवा दयालुम शरणम ब्रजेमा, पूतना बेचारी नहीं जानती थी कि मैं कृष्ण के पास जा रही हूँ तो उनकी माँ बन जाऊँगी, बल्कि वो कृष्ण को ही समाप्त करने जा रही थी, पर भगवान का ऐसा स्वभाव है। अतः जेन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश, किसी भी प्रकार से कृष्ण के समीप आना चाहिए, अनजान में भी कल्याण होकर के ही रहेगा। कोई व्यक्ति कुछ भी साधन नहीं कर रहा है लेकिन वृंदावन में आवे, वृंदावन आने मात्र से वो भगवान को पाएगा, इसमें संदेह नहीं है, ये धाम का प्रभाव है। और लाखों लाखों श्लोकों में इस धाम की महिमा गाई गई है, से वृंदावन महिमामृत ग्रंथ है। आगे जब प्रसंग आएगा तो मैं कुछ वृंदावन महिमामृत से और हरिश्वरी जी के वाक्यों से वृंदावन की महिमा पर कुछ बोलूँगा। वो बोले हैं इस धाम के विषय में, केवल इस धाम में आना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है, या संजोग कहे कि क्वचित एक ऐसी स्थिति है कि आने पर जमुना का दर्शन होगा, गिरिराज जी का दर्शन होगा, साधु महात्माओं का, भगवान के अनेक अर्चा विग्रह अनेक मंदिरों में हैं, भगवान का भजन करने वाले लोग घूम रहे हैं। तो इस तरह से सब तीर्थादौ श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं क्वचन का सब तीर्था दो। कभी कहीं किसी अकस्मात तीर्थ में आ गया तो तीर्थ जो रज है और यहाँ के कुंडों का जो जल है वो प्रभाव डालता है, उसमें कुट कुट करके कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। प्रेम सार धर है समोई ब्रज धूली में, धूली में प्रेम इसमें रखा गया है, ब्रज धूली में रखा हुआ है। तो पता नहीं कितने कितने जीव भगवान के धाम के संपर्क से भगवान को पा जाते हैं। और गोवर्धन जी हैं गिरिराज, उनकी परिक्रमा से, उनके दर्शन से, उनका नाम लेने से कोटि कोटि जीव भगवान कृष्ण के प्रेमी बनते हैं, पार होते हैं। पाप क्षय आदि तो बहुत हल्की बात, तो भगवान को प्राप्त करते हैं। अच्छा, किसी तरह से भगवान के नाम से संजोग बन जाए, किसी के मुख से नाम सुनने की आदत हो जाए या जिह्वा से उच्चारण करने की, एक क्वचन शब्द का अर्थ यह है नाम ग्रहण करने से। या कदाचित किसी श्रेष्ठ महत को, किसी साधु को कोई नमस्कार किया या भगवान के मंदिर में भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करने मात्र से कृष्ण उसको अपना समझने लगते हैं। यह भगवान का स्वभाव है, सकृत प्रणाम किए अपनाए, ये भगवान का अपना स्वभाव है। कोई ऐसा संसार में नहीं है जो एक बार प्रणाम करने पर और ये अपना मान ले कि हमारा व्यक्ति है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कोई ठीक नहीं है। भगवान कैसे कृपा करेंगे? भगवान का स्वभाव, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का धाम, भगवान के भक्त सब जगह है ही, और कब किस पर कृपा करेंगे कोई नहीं जानता है। तो जैसे अन्य साधनहीन पापी तापी लाखों तर गए केवल कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण के संपर्क में आने से, स्मरण करने से, तो मैं भी अवश्य कृष्ण को देखूंगा, मुझे विश्वास है। ये अच्युत के स्वभाव को देखकर बोल रहे हैं। और जब उनको सोचते हैं कि वे उत्तम श्लोक है तब आशा हट जाती है। अच्युत का अर्थ जो अपने स्वभाव से कृपा कृपालुत्ववादी लक्षण से जो कभी भगवान च्युत नहीं करते हैं, सदा कृपा करते रहते हैं। तो इस तरह अक्रूर जी मनोरथ करते हुए चल रहे हैं। तो अब सबसे पहला मनोरथ, ऐसे तो सामान्य रूप से मनोरथ किए कि जद्रक्षा मध्य केशव, मैं केशव को देखूंगा, लेकिन अब स्पेशल मनोरथांतर करेंगे कि मैं उनके चरण कमल को देखूंगा। सबसे पहले चूंकि दासेन आदौ अंग्रिपद्मम विभावयति चिंतयति, सबसे पहले भगवान के चरण पर ध्यान जा रहा है, क्योंकि दास से भाव है अक्रूर जी का। यदि भगवान इनके भतीजे हैं लेकिन फिर भी ये स्वामी मानते हैं भगवान, तो चरण कमल की विभावना करेंगे। वो कथा हम लोग बाद में सुनेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री गोपाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। द्रक्षेऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुना हरेः, कृतावतारस्य दुरात्ययं तमः, पूर्वेतरञ्जन्नखमण्डलद्विषा, जदर्चितं ब्रह्मभवादिभिः सुरैः, श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतये, गोचारणाय अनुचरैश्चरद्वने, यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम्, तो श्री अक्रूर जी मनोरथ कर रहे हैं, उनके साथ हम लोगों को भी उनके रथ पर ही बैठ कर चलना चाहिए, या कम से कम उनकी दशा पर विचार कर किया जा रहा है गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित की सभा में श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अक्रूर जी के मनोरथ थे परक तीन श्लोकों को प्रस्तुत किया गया था सवेरे, ये उनके मनोरथ का चौथा श्लोक चालू हो रहा है। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवंश्चैव मे भवः जन्नमस्ते भगवतो योगी धेयांग्रि पंकजम्। इसके पहले दो श्लोकों में श्री अक्रूर जी पहले तो भगवत दर्शन की असंभावना व्यक्त किए और बाद में संभावना दृढ़ कर रहे हैं, और इस प्रवृत्ति से ही वे कहते हैं कि जब मैं चला हूँ मथुरा से ब्रज में तो इस प्रवृत्ति से ही मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए। ममाद्या मंगलम नष्टम, मैं अमंगलम अद्य नष्टम, मेरे सारे अमंगल दूर हो गए। अमंगल का क्या अर्थ है? अमंगल का अर्थ किया गया है दुर्दृष्ट। पहले के जितने भी बुरे कर्म होते हैं किसी जीव के, तो वे जब फलोन्मुख होते हैं तो भगवत विमुखता रहती है उस व्यक्ति के जीवन में, पाप ही पाप रहता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है और भोग की स्पृहा रहती है, मान की और नाना प्रकार की। लेकिन अक्रूर जी कह रहे हैं कि अद्य मम अमंगलम नष्टम, अद्य नष्टम, तो अद्य नष्टम का ये अर्थ नहीं है कि आज का दिन नष्ट कर दिया। अद्य से तात्पर्य यहाँ है अनया प्रवृत्तिया एवं, इस काम से ही मेरा अमंगल नष्ट हो गया। अथवा यहाँ जो वातावरण छा रहा है कि कंस जैसा व्यक्ति भी मुझे ब्रज में भेज रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरा अमंगल नष्ट हो चुका है। अब तक अमंगल था क्या? हाँ, इनके अनुसार यदि अमंगल नहीं रहता तो मथुरा कितनी दूर है वृंदावन से, वे आ गए होते साक्षात भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन वे अनुभव कर रहे हैं कि मेरा अमंगल था लेकिन आज मेरा अमंगल नष्ट हो गया। जैसा आप लोगों ने पहले सुना था कि जब उत्तम श्लोक नाम याद आ रहा है तो अक्रूर जी को निराशा हो रही है, परंतु जब भगवान का अच्युत नाम या गुण याद आ रहा है तो आशा हो गई। और भगवान के गुणों को देख करके तो आशा हुई ही, परंतु वर्तमान में जैसा कंस का हृदय परिवर्तन हुआ है और अक्रूर जी चल दिए हैं ब्रज पथ पर, तब कहते हैं अब निश्चित हो गया कि मेरा मंगल दूर हो गया, नष्ट हो गया। और मैं भव जन्म च फलवान एवं जाता, और मेरा जन्म सफल हो गया, फल लग गया जन्म में। तो जन्म का फल क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई व्यक्ति बहुत सा वृक्ष लगावे, या कम से कम मान लीजिए एक वृक्ष लगावे यह आशा करके कि इसका फल खाऊंगा, इसकी छाया में रहूंगा, और उस वृक्ष में संजोग से एक भी फल न आवे, और उस सिंचाई किया है, रक्षा किया है, मेहनत किया है, एक भी फल न आवे उसको उसमें, तो कहा जाएगा कि यह वृक्ष निष्फल रहा, विफल रहा। निष्फल रहा वो तो कुछ ठीक भी है, लेकिन विपरीत फल लगा, विफल हुआ, वो ठीक नहीं है। इस जीवन में व्यक्ति धन कमाना चाहता है, भोग करना चाहता है और दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहता है, सबकी इच्छा रहती है, लेकिन ये सब फल नहीं है इस शरीर वृक्ष के। फल है भगवान कृष्ण से प्रेम करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का नाम लेना, प्रणाम करना और उनसे प्रेम करना, ये है जीवन का फल। तो श्री अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं भव फलवान एवं जात, मेरा जन्म सफल हो गया। कैसे जानते हैं जन्म सफल हो गया? किस कारण से कहते हैं जन्म की सफलता? कहते हैं जब, क्योंकि जस्मात भगवतः योगी धेयांग्री पंकजम नमस्य, मैं भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करूँगा। योगी धेयांग्री पंकजम विशेषण दे रहे हैं चरण पंकज का। ध्यान रखिए कि इस सिटिंग में हम लोग भगवान के चरण पंकज की ही कथा सुनेंगे, तीन श्लोकों में दिए गए। जन नमस्य भगवतो योगी धेयांग्री पंकजम, योगी धेयांग्री पंकजम, योगियों के द्वारा जो ध्येय है, इसके दो अर्थ है। एक तो योगी जन ही भगवान का चिंतन कर पाते हैं, साधारण विषय नहीं कर पाते हैं, और योगी लोग भी केवल ध्यान ही कर पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो योगी लोग अपने हृदय में जिस चरण कमल का चिंतन करते रहते हैं, परम पुरुषार्थ मान करके अपने जीवन का सबसे बड़ा लाभ मान करके भगवान के चरण कमलों का केवल चिंतन करते रहते हैं, उन्हें दर्शन करने को नहीं मिलता है। उन्हीं उसी चरण कमल को आज मैं साक्षात कृत्य साक्षात आँख से देखूंगा और देखने के बाद नमस्ते मैं प्रणाम करूंगा। ओहो मैं भाग्य, मेरा कितना बड़ा भाग्य है और इसके पहले कार्य मेरा जन्म सफल हो चुका है। तो श्री कृष्ण को प्रणाम करने से यह शरीर फलवान होता है। किसी भी व्यक्ति को अपना रूटीन बनाना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रणाम करेंगे भगवान के सामने। केवल कसरत की तरह नहीं, मन से भी झुकना चाहिए, मन से वाणी से कुछ कहना भगवान को कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। जैसा षट गोस्वामी के विषय में कहा गया है, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला वसानी कृपा। गोस्वामी जन संख्या पूर्वक नाम गान करते थे, अर्थात जप करते थे गाने जैसा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और नति भी आदि आदि शब्द नहीं लगाया गया। सबसे अधिक समय बीतता था किन कार्यों में, नाम जपने में और भगवान को प्रणाम करने में। ऐसे कहा जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 प्रणाम रोज करते थे, साष्टांग दंडवत भगवान को। खाते क्या थे, एक दो न मट्ठा पीते थे बस, इतना कम खाते थे और 1000 रोज प्रणाम करते थे और 200 वैष्णवों को प्रणाम करते थे, नित्य का नियम था। तो प्रश्न होता है कि 200 वैष्णव उनको कहाँ मिलते थे, तो मन से स्मरण करके कि कुछ नवद्वीप में हैं, कुछ जगन्नाथपुरी में हैं, कुछ ब्रज में इधर उधर बिखरे हैं, संकल्प कर करके और साष्टांग प्रणाम करते थे। वो वैष्णव यहाँ नहीं थे, कुछ ही वैष्णव यहाँ मिलते थे, लेकिन सबको प्रणाम करते थे, 200 प्रणाम और 1000 भगवान को प्रणाम करते, उसको नति कहते। ऐसा करने से तब शरीर सफल होता है, नहीं तो ये बेकार देह जाएगा। भगवान को प्रणाम करने में आनंद का अनुभव करना चाहिए। तो मैं नमस्कार करूँगा साक्षात कृत्य, साक्षात कृत्य का अर्थ है कि आँखों के सामने देख करके प्रणाम करूँगा। योगी लोग जिन चरण कमलों का केवल ध्यान मात्र कर पाते, ऐसे चरण में मैं प्रणाम करूँगा, इसीलिए मेरा जीवन सफल है। जतो योगिभिः केवलं ध्येयमेव न तु दृश्यम् अंग्रिपंकजं नमस्करिष्ये नमस्करिष्यामि इत्यर्थ। जदवा अब अक्रूर जी यह बता रहे हैं कि अधुना तत्कारुण महिमा ममाघ मत्वम अपगतम इत्याह ममे, भगवान के कारुण्य की महिमा से ही मेरी अधमाई चली गई। जैसा उन्होंने पहले कहा कि मैवम ममाध मस्यापि स्यादेवा चतुदर्शनम ह्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन। मैं अधम हूँ फिर भी भगवान का मुझे दर्शन होगा, उनसे भेंट होगी। तो अब कह रहे हैं कि इन सब स्थितियों से लग रहा है कि भगवान की करुणा महिमा से, केवल उनकी कृपा से मेरा अधमत्व चला गया। वृंदावन के पथ पर कोई चल दे कहीं अपने घर से, तो वहीं से समझना चाहिए कि जितना पाप ताप था सब समाप्त हुआ है, अधमत्व चला गया भगवान की कृपा से। और वास्तव में इधर से जब कृपा होती है राधा रानी की, तब किसी के चित्त में संकल्प उठता है कि ब्रज में चले। जब संकल्प उठे और व्यक्ति आने की सोचे, तो समझना चाहिए कि उसका जो बुरा कर्म था सब नलिफाई हो रहा है, अब बीत गया है, तब संकल्प उठता है। और यहाँ आने पर तब तो पाप ताप का कोई नामो निशान ही नहीं रह सकता, ऐसा कई जगह लिखा गया है। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही मेरा अधमत्व चला गया। तत्कारुण्य महिमना अमंगलम अशुभ अदृष्टम, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं अमंगलम का। ककुर जी कह रहे हैं मेरा अमंगल दूर हो गया, अब तक मैंने जो भी पाप किया था, जिस पाप के चलते भगवान के पास मैं नहीं आ रहा था और मुझे इस जीवन में कंस जैसे नीच की सेवा करनी पड़ी, लेकिन आज मेरा सारा अशुभ कर्म नष्ट हो गया भगवान की कृपा। तो मुमुक्षु भी योगी भी ध्येयम हृदय चिंत्यम जद अंग्रि पंकजम तत् साक्षात नमस्य, मैं नमस्कार करूँगा। अमंगल नासे सूचकांतर माह, सातवें श्लोक में अभी आप बता रहे हैं, कोई पूछे कि हे अक्रूर जी आप कैसे जानते हैं कि आपका अमंगल नष्ट हो गया, कारण बता रहे। सबसे बड़ा लक्षण तो ये बता रहे हैं कि कंस तक मुझ पर कृपा किया, जो मैं चाहता था उसको छुट्टी दे दी। बहुत वर्षों से जिस अभिलाषा में मैं था, कंस भी उसका अनुमोदन कर दिया, स्वयं कहा मुझसे आने के लिए। यही लक्षण है कि मेरा अशुभ नष्ट हो गया। जब तक मेरा अशुभ नष्ट नहीं हुआ था तब तक कंस भी बांधे रहा। भगवान भगवत कृपा से अमंगल नष्ट हुआ। श्री वासुदेव स्वामी जी कहते हैं, अमंगल नाशे सूचकांतरम आह। अमंगल नाश के विषय में जो सूचना मिल रही है उस सूचना को बता रहे कंस बत। कंस इति बत इति आश्चर्य। इस श्लोक में बत शब्द है। अक्रूर जी स्वयं कह रहे हैं, कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहम द्रक्षेंग्रिपद्मं प्रहितो मुनाहरे। बत का आश्चर्य है। स्वयं अक्रूर जी आश्चर्य कर रहे हैं, कौन सा ऐसी कृपा कैसे कर दिया। बत इति आश्चर्य, ये कैसे हो गया। भगवत कृपा की महिमा गा रहे हैं लेकिन फिर भी आश्चर्य कर रहे हैं। तो आश्चर्य है कि कंस मुझ पर ऐसा अनुग्रह किया। कंस इति बत इति आश्चर्य। कंस अति खल कंसोपि मम अत्यंतम अनुग्रहम कृतवान। एक तरफ कंस को अति खल कह रहे हैं श्रीधर स्वामी। अक्रूर जी तो केवल कंस कह रहे हैं, तो कंस शब्द से ही समझ लेना चाहिए कि जितना भी खल बदमाश कहा जा सकता है वो कंस में सब कुछ पर्यवसित था। वास्तव कंस कह देना ही काफी। तो श्रीधर स्वामी जी उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, अति खल कंस यपि। एक तरफ कंस जैसा खल और उधर अति अनुग्रहम अकृत, अति अनुग्रह किया। इसी से पता लगता है कि मेरा अमंगल नष्ट हो गया, भगवान मुझ पर पूरा पूरा प्रसन्न। कंसोपि मम अत्यंतम अनुग्रहम कृतवान। क्या अनुग्रह किया है। जतो अमुना कंसेन प्रहितो प्रेरित हरे अंग्रि पद्मं द्रक्ष द्रक्षेण। इसी के द्वारा भेजा हुआ मैं भगवान के चरण कमल का दर्शन करूंगा। अमुना, अमुना शब्द का एक तत्पर्य है इसी के द्वारा। लगता है जैसे पास में ही है ऐसे बोल रहे हैं। निरंतर कई साल से उसके साथ रहे हैं और आज्ञा भी दिया है भगवान के पास जाने के लिए, उसके दिए हुए रथ पर चढ़े हैं, तो उन्हें लगता है कि कंस पास में ही। इसलिए कहते अमुना प्रहित प्रेषित अहम हरे अंग्रि पंकजम अंग्रि पद्मम द्रक्ष। भगवान के चरण कमल को देखूंगा कंस के द्वारा भेजा हुआ जाए। यदि कंस नहीं भेजा होता है तो मैं अभी तो सोच भी नहीं रहा था भगवान का दर्शन करने का। कहने का ऐसे कोई आशा नहीं थी पर कंस ने स्वयं ही कहा। इसका अन्वय देखिए इस तरह से। पहले श्लोक है, अद्य अनया प्रवृत्तैव मम अमंगलम नष्टम मे भव जन्म च फलवान एव जात जस्मात् भगवतः निजाशेष ऐश्वर्यम प्रकटयतः श्रीकृष्णस्य योगी धेयांग्रि पंकजम योगी भी रेव ध्येयम तैरपि ध्येयमेव न च दृश्यम जद अंग्रि पंकजम तत् नमस्य साक्षात कृत्य नमस्यामि। दूसरे श्लोकार में देखिए, बत आश्चर्य कंस अद्य मे मह्यम अत्यनुग्रहम अकृत अकरोत। अकृत का अर्थ अकरोत, किया। कुतः, कैसे कंस अनुग्रह किया। जतः जन नखमंडल त्विषा जस अंग्रि पंकजस्य नखमंडल त्विषा नख नीचे कांत्या किंवा नखमंडल मात्रस्य ध्येयस्य त्विषा कांत्या पूर्वे ब्रह्मादय ध्यातारोपि दुरत्ययम तमः तमः कार्यम संसारम अतरम तीर्णा बभूव कृतावतारस्य कृत अवतार जन तस्य हरे श्रीकृष्णस्य अंग्रि पद्मं चरण कमलं अमुना कंसेन प्रहित प्रेषित सन अहम द्रक्ष द्रक्ष्यान। संस्कृत को इस तरह से पढ़ने पर पूरा पूरा अर्थ खुल जाता है। तीसरे इस श्लोक का अन्वय देखिए, जत अंग्रि पद्मम ब्रह्म भवादि भी सुरई अर्चितम ब्रह्म रुद्र आदि जैसाम तई सुरई अर्चितम देव्या देवस्य श्री विष्णु संबंधिन्या श्रिया लक्ष्म्या अर्चितम स सात्वत भक्त सह मुनि च अर्चितम जत अंग्रि पद्म गोचारणा अनुचर सह वने चरत गोपिका नाम कुछ कुमकुमांकित कुछ कुमकुम अंकित चिन्हित तत् अहम द्रक्ष्यामि इति पूर्वेण संबंध, इससे पूर्व श्लोक संबंध, इसको देखूंगा। इसमें क्रियापद का प्रयोग नहीं है कि मैं देखूंगा क्या करूंगा, लेकिन पहले से इसका संबंध है, अथवा उत्तर वाक्य बाद वाले श्लोक से, जहाँ मिलाने की इच्छा हो मिलाना चाहिए। तो भगवान के चरण कमल की विशेषता अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे हैं रथ पर, भगवान के चरण कमलों को देखूंगा, यहाँ तक तो मनोरथ हुआ, अब भगवान के चरण कैसे हैं इसकी भावना कर रहे, चिंतक चिंतन कर रहे हैं। कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रह द्रक्षेन्द्रपद्म प्रहितो मुनाहरे कृतावतार से दुरात्ययम तमः पूर्वे तरंजन नखमंडल त्विषा। कंस मुझ पर बहुत अनुग्रह किया, क्योंकि इसी के द्वारा भेजा हुआ मैं भगवान के अंग्री पद्मम चरण कमल को देखूंगा। अंग्री का अर्थ है चरण और पद्मम का अर्थ है कमल। मैं भगवान के चरण कमल को देखूंगा। सदा भगवान के अंगों की उपमा कमल से दी जाती है, चाहे वो चरण कमल या हस्त कमल, मुख कमल, मुखारबिंद या कोई भी अंग हो, भगवान के अंगों की तुलना या उपमा कमल से की गई है बारंबार। इस संसार में कमल एक बहुत ही सुकुमार, सुगंधित और सुंदर वस्तु है, तो भगवान के अंगों में अद्भुत सौंदर्य है और इसके साथ ही साथ सुगंध है, और स्पर्श में वह बहुत ही सुंदर सुशीतल स्पर्श है, दिव्य है सब कुछ। इसीलिए भगवान के अंगों की उपमा कमल से दी जाती है। यद्यपि कमल तो प्राकृत है, मुरझा जाता है, क्षण भर के लिए है, भगवान का अंग तो दिव्य है, अप्राकृत है, लेकिन इस जगत में अब कमल से बढ़ करके कोई चीज़ मिलती नहीं है, अतः कमल से ही उपमा दे करके विद्वान लोग कभी लोग संतोष करते हैं, क्या करें। तो मैं भगवान के चरण कमल को देखूंगा, अंग्री पद्मम को देखूंगा, तब विभावना कर रहे हैं कैसे हैं चरण कमल। कृतावतारस्य दुरतयम तमः पूर्वे तरंजन नखमंडल त्विषा। कृतावतारस्य वाले भगवान की विशेषता बता रहे हैं। ये पूर्वे शब्द से अगर इस अवतार को जोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा जो पहले भी बहुत से अवतार लिए हैं, श्री वामन और श्री राम आदि अवतार, और उन अवतारों के श्री विग्रह के सौंदर्य के चरण नख की ज्योत्सना का ध्यान करके बहुत से योगी या बहुत से मुमुक्षु भक्तजन संसार को पार कर गए, संसार को तर गए। तो श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि दुरत्ययम शब्द के द्वारा तमसः समुद्रत्वम ध्वनितम, अतरण शब्द अतरण तर गए, तो तरना तो पानी में कहते हैं, समुद्र से कोई पार करता है, नदी से पार करता है तो कहते हैं तर गया, पार हो गया, तो तमस को तर गया। तो इसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये जो तमह है, अविद्या है इस संसार में, जो मुमुक्षा आदि दुर्वासना है जीव की, यह भोग वासना ये सब, यह घोर अविद्या है, अज्ञान है, जीव इसी को सुख मान करके लगा हुआ है, और यह समुद्र की तरह बहुत गहरा है, बहुत दूर में है, इसको पार पाना कठिन है। एक व्यक्ति शरीर ग्रहण करता है, उस शरीर में भोग भोगता है, मर जाता है, दूसरा शरीर लेता है, इस तरह से शरीरांतर देहांतर होता रहता है, लेकिन वह कभी भी भोगों से उबता नहीं है, उसकी वासना जाती नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि भगवान के चरण कमल के नख का भी, की ज्योत्सना का भी, एक कांति का भी कभी वो श्रवण कर ले, चिंतन कर ले, भगवान के अंग में से केवल नख का भी कभी वो अगर चिंतन कर ले, तो उसे इतना सुख प्राप्त होगा, इतना सुख प्राप्त होगा कि उसके आगे वो सारे संसार की वासना को भूल जाएगा सब कुछ। तो इसको कहते हैं तरना, वो तर जाएगा, तर गए पहले। कृतावतारस्य, तो श्रीपद जी गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के बहुत से अवतार हैं, उन अवतारों के नखमंडल त्विषा से अनेक भक्त पहले तर गए संसार। ध्यान रखिए कि संसार की आसक्ति को छोड़ना बिल्कुल कठिन बात है, वही छोड़ सकता है जिसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के रस का चस्का मिल गया है, क्योंकि उस आनंद के आगे इस संसार के आनंद को है समझ लेता है। यही तरना है, संसार वास्तव में कोई समुद्र नहीं है, ना अंधकार है, अविद्या अज्ञान को ही तमह कहा जाता है। तो पहले तर गए, तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं कृतावतारस्य, जब भगवान अवतार लिए थे बहुत पहले कई अवतार, तो भगवान के उन अवतार के चरण कमल के नख का चिंतन करके उसके कांति से उसके आस्वादन से पार हो गए बहुत से लोग। तो फिर हरि स्वयं श्री कृष्ण जो अवतारी हैं उनके नख मंडल ट्वीट का ध्यान किया जाए तो कितने बड़े भाग की बात है। तो अक्रूर जी का कहने का आशय है कि जिनके अवतार के चरण कमल के नख ज्योत्सना का ध्यान करके बड़े बड़े भक्त सब पार हो गए संसार से, तो सर्व अवतारों के अवतारी साक्षात परब्रह्म भगवान कृष्ण के चरण कमल को मैं देखूंगा, मेरा बहुत बड़ा भाग्य होगा। और इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जो नराकृति विग्रह है भगवान श्री कृष्ण का वह सनातन है, इस श्लोक द्वारा सिद्ध हुआ। क्योंकि भगवान कृष्ण ही अवतार लेते रहते, यही अवतार लेते हैं कृतावतारस्य। पूर्वे पूर्वे शब्द बता रहा है, पहले भी भगवान कृष्ण ने बहुत बहुत अवतार लिया है। तो भगवान का यह जो द्विभुज ब्रजबिहारी स्वरूप है यह सनातन। और श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी श्रीपाद जीव गोस्वामी जी एक अर्थ करते हैं कि नखमंडल त्विषा, त्वीट का अर्थ होता है कांति, किरण, प्रकाश, त्वी, जैसे हम लोग उस प्रसिद्ध श्लोक में पढ़ते हैं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, चतुर्थी विभक्ति में ट्वीट शब्द चतुर्थी में त्विषे हो गया एक वचन गौरत्विषे। ट्वीट का अर्थ होता है कांति, चैतन्य महाप्रभु के अंग की कांति गौर वर्ण की। तो जन नखमंडल त्विषा, भगवान के चरण कमल के नख की एक कांति से संसार सागर को पार कर गए। तो श्रीपद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं एकया कांत्या ईषद भजने नित्य, थोड़ा ही भजन भगवान के चरण कमल का नाम मात्र भी कोई भजन करे तो वो तो अविद्या को पार कर जाएगा, उसे इतना सुख मिलेगा भगवान के चरण कमलों में कि उस संसार को क्या मोक्ष सुख को भी भूल सकता है, मोक्ष लघुता कृत सब कुछ भूल जाएगा। और फिर भजनांतर करे तो कहना है क्या है, केवल एक कांति का चिंतन किया तो पार हो गया, फिर और भजन श्रवण कीर्तन आदि करे तो कहना ही क्या है। जीव गोस्वामी जी आगे इसका की व्याख्या की, नखमंडल इसका अर्थ है भगवान के चरण कमल दो हैं, एक वचन में कहा गया है क्योंकि दोनों चरण तो साथ में ही रहते ही हैं, तो हमेशा द्वि वचन में कहने की आवश्यकता नहीं है, सदा सहचरत्वात् अंग्रिपद्म ये चरण पंकजम एक वचन में कहा जा रहा है, एकेन द्वित्वम समझ लेना चाहिए, दोनों चरणों का विशेषण। और एक एक चरण में पांच पांच अंगुलियां हैं बहुत सुंदर, और एक एक अंगुली में एक एक नख है, तो दस नख हुए इसलिए नखमंडल कहा गया, नखमंडल नख समूह और उसकी कांति। अथवा एक ही नख का जो बिंब है, सभी लोग जानते हैं सबके पैर में नख होता है, इसलिए भगवान के चरण कमल के नख का चिंतन करना स्वाभाविक है मनुष्य के लिए, तो जो नख होता है उसको भी मंडल कहते हैं। मंडल का अर्थ हमेशा गोला ही नहीं होता है, वर्तुल ही नहीं होता है, मंडल का अर्थ है बिंब, वह एक क्षेत्र नख मंडल। तो कोई व्यक्ति केवल एक नख का ही थोड़ा ही चिंतन करे या वर्णन करे श्रवण करे तो उसकी मोक्ष पर्यंत दुर्वासना समाप्त हो जाएगी, वो भगवान में आसक्त होकर के ही रहेगा। तो जो संसार सागर बड़े बड़े उपायों से नहीं तरा जा सकता है वह भगवान के एक चरण नख की कांति से पार हुआ जा सकता है। ऐसे वहाँ तमह कहा गया, तो तमह शब्द का अर्थ अंधकार है, सीधा अज्ञान अंधकार, और कांति शब्द का अर्थ है प्रकाश। भगवान के चरण के एक नख की ज्योत्सना से सब जगह ब्राइट उजाला हो जाएगा, चमक हो जाएगी, अंधकार रह नहीं पाएगा। अरे तभी तक जीव को ये संसार अच्छा लग रहा है या मुक्ति अच्छी लगती है जब तक श्री कृष्ण के चरणारविंद के नख चंद्र की छटा को नहीं समझ पाया। नख चंद्र या चरण पद्म से संपूर्ण भगवान को समझना चाहिए, परंतु यहाँ पर विशेष वर्णन हो रहा है क्योंकि अक्रूर जी दास से भाव के भक्त हैं, तो सबसे पहले भगवान के चरण कमल का चिंतन कर रहे हैं, मनोरथ कर रहे हैं मैं चरण कमल को देखूंगा। तो लक्ष्मण डलत त्विषा ये शब्द कह रहे हैं तो उनका ध्यान जा रहा है कि मैं भगवान के दसों नक्षत्र को देखूंगा, कि सुनता हूँ कि वे मणि की तरह जगमग करते रहते हैं। सुने ही होंगे, भक्त हैं ही, पराभक्ति इनको प्राप्त है ही, भगवान के चरण कमल हृदय में उदित रहते ही होंगे। तो नखमंडल देखूंगा और उस नखमंडल से कांति निकलती है, ज्योति निकलती है। एकादश स्कंद में हरि जी कहे हैं भगवतों के लक्षण में, तो ये कहते हैं भगवत उरुभिक्रमा घृषांक शाखा नखमणि चंद्रिकया निरस्त तापे हृदय कथम उपसीद तम पुनः स चंद्र इवो दितेर कताप। कह रहे हैं महाभागवत का लक्षण बताते हुए, और फिर बता रहे हैं कि जिस वैष्णव के हृदय में, जिस भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के नख मणि की ज्योत्सना छा गई है, उस आनंद को जो पा गया है, तो फिर कैसे दूसरी कामना उसके अंदर आ सकती है। कामना को ताप कहा गया है, भगवान ने भी कामना को, काम को अग्नि कहा है, दुष्पूरेणा नले नच। तो जब भी हृदय में कोई कामना हो जाती है, चाहे संसार की हो या योग सिद्धि की या मुक्ति की, तो हृदय में एक जलन होती है, कामना जलाती है हृदय को। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के चरण कमल, चरण है नख मणि की ज्योत्सना छा गई है, उस हृदय में फिर दूसरी कामना का ज्वर होगा ही नहीं, ताप होगा ही नहीं। जैसे चंद्रमा यदि उग गया हो अपनी शीतल किरणों को बिखेरते हुए, तो फिर सूरज के ताप का कोई भय नहीं रहे। चंद्रमा जब उगता है तो अपने शीतल किरणों का संचार कर देता है, दिन भर की जो जलन होती है मिट जाती है। भगवान के नक्षत्र तो दस हैं, दस चंद्र उदित हों तब कहाँ से ताप रह सकता है। और कैसे नक्षत्र नखमणि की छटा, तो कहते हैं भगवत उरु विक्रमांग ऋषाखा नखमणि चंद्र कया निरस्त तापे हृदय। भगवान उरुक्रम के या भगवान के उरु विक्रमांग्री शाखा, उरु विक्रम का अर्थ है उर्व विक्रमा। जब भगवान रासलीला में खास करके नाचते हैं तो इतना तेज गति से चरण विन्यास करते हैं और एक एक गोपी के साथ एक एक मूर्ति से प्रकट होकर के, तो इसी को यहाँ पर हरि जी कह रहे हैं भगवत उरु विक्रमांग्री शाखा। अंग्री शाखा, अंग्री शाखा कहते हैं उंगुलियों को, पैर की शाखा, और उस शाखा में नखमणि, नख ही मणि की तरह जगमग कर रहे हैं। तो भगवान जब नाचते हैं ताता थे 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 इत्यादि करके, तो बार बार चरण इधर से उधर नाचते हैं, कभी गोला वर्तुल नाचते हैं, कभी पैर को थिरकाते हैं। तो भगवान के रासलीला में नाचते हुए चरण कमल की ज्योत्सना का जिस व्यक्ति ने ध्यान किया है, क्या कभी उसके मन में किसी भी काम का ताप आ सकता है? कभी संभव नहीं है। इतना सुख है भगवान के चरण कमल नख के चिंतन में कि वह फिर दूसरी वस्तु की कामना कर ही नहीं सकता है। जैसे चंद्रोदय हो जाने पर न अर्क ताप पुनः प्रभवती, अर्क ताप नहीं रह जाता, सूर्य का ताप नहीं रह जाता। तो भगवान के चरणों की उपमा, हम नख की उपमा मणि से कहीं कहीं दी गई, कहीं कहीं चंद्र से दी गई। इस श्लोक में हरि जी एकादश स्कंद के श्लोक में कहते हैं नख मणि चंद्रिका, चंद्रिकया निरस्तता। भगवान के जो नख हैं वो मणि की तरह जेम, और उनसे छटा निकलते रहते, प्रकाश निकलता रहा। तो ऐसे प्रकाश से जिस भक्त के हृदय का अंधकार दूर हो गया, उसमें कैसे दूसरी कामना आएगी? ये कभी संभव नहीं है। इतना सुख है भगवान के चरण कमल, उसी को अक्रूर जी कहते हैं दुरत्ययम तम। ये जो काम है, जो संसार के भोग की या मुक्ति की लालसा है किसी जीव को, यह दुरत्य अंधकार है, यह अविद्या है, अज्ञान है। वास्तव में इस अज्ञान से पार होना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और यह सदाचार है संतों का, सज्जनों का आचार है कि पूर्व काल में जितने लोग माया से पार हुए, सब भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नक्षत्र का ध्यान करके पार हो गए। इसमें श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं अम्बरीषादय, अम्बरीषादि सवई मन कृष्ण पदार विंदय बचान सि वैकुंठ गुणानुवर्णन। महाराज अम्बरीश ने अपने मन को भगवान के चरण अरविंद में लगाया था। यह स्पष्ट है, सबसे पहले उनकी भक्ति का वर्णन किया जा रहे थे। सवई मन कृष्ण चरा पदारविंद, पदारविंद चरण कमल में लगाया था। तो चरण कमल में कमल की जो शाखा है, अंगुलियां, नाक और फिर भगवान का चलना, नाचना, थिरकना, ये सब ध्यान करते थे। मन हमेशा अम्बरीश महाराज का इसमें लगा रहता है, इसीलिए तो पूरे राज्य को निरयम चकार नरक बना दिए थे। नरक बनाने का मतलब उनके उनका ऐसा कंसेप्शन था कि देवताओं का लोक तो है ही नहीं, और दुनिया में जो भी भोग है सब नरक है, कुछ नहीं है, भगवान के भक्ति के आगे सब नरक।